ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने दादी गुलजार जी के द्वारा जो मैसेज भेजा तो सारे ब्राह्मण संसार में उसी की चर्चा है कि बाबा ने ये मैसेज भेजा है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या करें। कोई मैसेजेस के द्वारा तो कोई फोन के द्वारा, तो लगा कि क्यों ना थोड़ी चर्चा आज हम उस पर ही करें, क्योंकि आप सबके मन में भी वो विचार तो होंगे ही, तैयारियां भी आप सब कर ही रहे होंगे, क्योंकि बाबा ने एक प्रकार से हमें संदेश के साथ शिक्षा भी दी है और साथ ही साथ त्रिमूर्ति ने तीन खास बातें अपने जीवन में लाने को भी कही हैं। कौन सी तीन बातें थी जो बाबा ने इशारे के रूप में दी? पहली बात, हां जी, आपसी मतभेद को समाप्त करो। दूसरी बात, एक साल के लिए खाद्य सामग्री या जो भी आवश्यक चीजें हैं उनका स्टॉक जमा कर लो। और तीसरी बात, अमृत वेले को बहुत पावरफुल करो। तो पहली बात जो बाबा ने कही, आपस में जो भी मतभेद है उसे समाप्त करो। तो है मतभेद आप लोगों में? है मतभेद या नहीं है? हाँ जी, एक परिवार में यदि चार या पांच सदस्य भी हों तो आपस में वैचारिक मतभेद होता है या नहीं होता? यदि मुझे कमरे को या पूरे घर को पेंट करवाना है तो एक कहेगा नहीं हम सफेद कलर से पेंट करवाएंगे, सफेद कलर बहुत अच्छा है। एक कहेगा नहीं नहीं पीला कलर बहुत अच्छा लगता है। तीसरा कहेगा नहीं नहीं पीले के साथ यदि तीन दीवारें नीली हों तो अच्छी है। तो वैचारिक मतभेद होता है ना? तो मतभेद तो हो लेकिन मन भेद ना हो, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विचार अलग अलग रहेंगे और सभी के विचारों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता। किसी एक की ही बात मानी जाएगी और घर को उस ढंग से कलर किया जाएगा, होगा या नहीं? अब दूसरा ये कहे कि मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी मत नहीं मानी गई, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, या वो रूठ जाए बैठ जाए, तो ये ठीक तो नहीं है ना। इसके लिए बाबा ने हम सबको क्या सिखाया है? मालिक बन करके अपनी बात रखो और बालक बन करके स्वीकार कर लो। यहां फिर वो मतभेद की स्थिति नहीं रहती। मालिक हैं हम सब, मालिक हैं, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन दूसरी बात बाबा ने जोड़ी है कि बालक बन करके फिर स्वीकार भी हम कर लें। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो देख लेना। तो अड़ना अकेले नहीं आता, अड़ना के साथ लड़ना भी आता है, और लड़ना के बाद रोना भी, और रोना के बाद खोना भी। तो ये चीजें लिंक्ड हैं एक दूसरे से, अड़ना उसके बाद लड़ना फिर रोना। भले लड़े हम या तो सामने से या फिर मन ही मन युद्ध चलता रहता है ना, होता है ना, किसी से मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, एक ही रूम में हम लोग हैं, रात को आप जल्दी सो जाते हैं, कोई 11 बजे आके लाइट जला देता है, खिटिर पिटिर करना शुरू कर देता है, या 2 बजे से उठ के धूमधड़ाम शुरू। तो या आप नहीं बोल पाते हैं, लड़ पाते हैं, तो मन में तो द्वंद शुरू हो जाता है ना, हो जाता है या नहीं हो जाता? तो अड़े नहीं, किसी बात को लेकर यदि हम अड़ जाते हैं तो ये चीजें शुरू हो जाती हैं, लड़ाई भी शुरू हो जाएगी और साथ ही रोना, और फिर तो बाबा कहते हैं खोना भी होगा। बाबा ने हमें सिखाया ना अड़ना ना झगड़ना, बल्कि झुकना। झुकना ये हमारी रॉयल्टी है, ये बाबा ने हमें सिखाया है, और ये अभी से नहीं लेकिन यज्ञ की शुरुआत से ही चला आ रहा है। एक सुंदर सा स्लोगन कि झुक झुक सीख सीख मरमर, झुकना पहले से ही चला आ रहा है, ये तो हमारी रगों में होना चाहिए कि हम झुकें, क्योंकि जो झुकेगा जो मरेगा वही तो सीखेगा, वही तो आगे बढ़ेगा, जिसको अव्यक्त बाबा ने भी बहुत सुंदर अपने शब्दों में कहा। कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि बाबा क्या हमेशा मुझे ही मरना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये मरना मरना नहीं है, लेकिन सदा काल के लिए अमर बनना है। ये झुकना झुकना नहीं है, लेकिन विजय माला अपने गले में डालना है। वैसे भी यदि किसी के गले में माला डालनी हो तो उसको क्या करना पड़ता है, जो झुकेगा उसके गले में ही माला आएगी, और यदि खड़ा रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी ना, फेंकना पड़ेगा ना? और वो गले में भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कहीं और भी जा सकती है। तो यदि विजय माला अपने गले में डालनी है, यदि भगवान के भी गले का हार बनना है, झुके, क्योंकि झुकने के बाद ही हमारे अंदर वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये चीज जो एक मतभेद की बात बाबा ने कही, उसको झुक करके हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात व्यक्ति के मन में हमेशा आती है, यदि मैं सही हूं तो क्यों झुकूं, मैं सही हूं ना। वैसे कहा जाता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मान लो सामने वाला 90% गलत है, 95% गलत है, तो संभावना ये जरूर रहती है कहीं ना कहीं कि 5% या 10% मेरी तरफ से भी कोई बात हो, तभी तो ताली बजती है, तभी तो ये एक द्वंद की स्थिति पैदा होती है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं क्यों झुकूं। मान लें कि यदि मैं पूरी तरह से सही भी हूं और सामने वाला इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, फिर भी वो मतभेद वाली स्थिति, वो द्वंद वाली स्थिति, वो विवाद वाली स्थिति बनी हुई है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मान लीजिए पिताजी एक खिलौना लेके आते हैं, दो भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा। अब उस खिलौनों के देख के वो दोनों भाइयों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है कि मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, और वो घर का माहौल पूरा वो अशांत कर देते हैं। पिताजी किससे कहेंगे, बड़े से कहेंगे कि बेटा ये तू खिलौना इसको दे दे, मैं तेरे लिए बाद में ले आऊंगा, कहेंगे ना, बड़े को कहेंगे। और बड़े का बड़प्पन तभी है जब वो इस बात को स्वीकार कर ले कि ठीक है पिताजी मैं इसे ये दे देता हूं। यदि बड़ा स्वीकार नहीं करता है तो बड़ा बड़ा नहीं है, और यदि छोटा स्वीकार कर लेता है इस चीज को तो छोटा छोटा नहीं है लेकिन वो बड़ा है। ज्ञान में भले वो 2 साल से है, 5 साल से है, और 40 साल 50 साल वाले के आगे भी यदि वो इस स्थिति को सॉल्व कर लेता है तो छोटा यहां बड़ा बन जाता है। और विचार करें फिर पिताजी क्या करेंगे, यदि बड़ा इस चीज को मान लेता है, छोटे को दे देता है खिलौने को, विवाद को खत्म कर देता है, तो पिताजी क्या करेंगे, दूसरे दिन उससे कई गुना ज्यादा महंगा खिलौना, अच्छा खिलौना लाके उसको देंगे। देंगे या नहीं देंगे, इस चीज को हमें भी यहां समझने की जरूरत है कि यदि मैं थोड़े समय के लिए अपना ये जो सेवा का खिलौना है या जो बात विवाद पैदा कर रही है, मतभेद पैदा कर रही है, उसे मैं सामने वाले को दे दूं या झुक जाऊं, तो मेरे पिताजी लाख गुना ज्यादा बड़ा फल या खिलौना या फिर जो भी देना है वो मुझे देंगे या नहीं देंगे। लॉ है, ये लॉ है, भगवान की आज्ञा मानकर यदि हमने ये किया तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और हमें लाख गुना ज्यादा अच्छी चीज हमें प्रदान कर देंगे। ये एक समझ अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है, और इससे ये महानता बहुत सहज रूप से आ जाएगी। मैं बड़ा हूं, मैं पूर्वज हूं, और वैसे भी जो फलदार वृक्ष होता है, हम लोग कितना भाषण करते हैं, जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, और जो सीधे खड़ा रहता है उसको बिल्कुल, जो झुकते हैं उसमें जान होता है, कहते हैं अकड़े रहने मुर्दे की पहचान है, ये भी कहा जाता है। इसलिए हम झुकें, इस चीज को थोड़ा सा हम गहराई से अपने अंदर लाएं, तब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हमारे अंदर, एक ये कि मैं बड़ा हूं और मुझे करना है, मैं करूंगा मुझे प्राप्ति होगी, और ये ईश्वरीय आज्ञा है, भगवान ने कहा है, और भगवान इस चीज से कितने प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता देखें पिताजी और माताजी के लिए। लेकिन घर में शांति होना, घर में खुशहाली होना, एकता होना, वो बड़ी चीज है। वो चीज बहुत छोटी सी है, लेकिन उसके एवज में जो चीज जा रही है, शांति, खुशी, एकता, वो कहीं बड़ी चीज है, और उसको हमें स्थापित करके रखना है। क्योंकि माता पिता की यही चाहना होती है कि बच्चे ऐसे प्यार से आपस में मिलकर रहें। बचपन में भी हम लोग एक कहानी सुना करते थे, एक पिताजी मृत्यु सैया पे पड़े हुए थे, चार बेटे थे उनके, चारों को बुलाया, एक एक लकड़ी दी, कहा तोड़ो, सबने तोड़ दिया। अब चारों को जब मिला के दिया तो नहीं तोड़ पाए। सीख क्या दी? एक होकर रहो, एकता में शक्ति है। यदि अलग अलग रहोगे कोई भी तोड़ देगा, यदि हम भी अलग अलग रहेंगे तो हम जो कार्य करना चाहते हैं, हम सबका लक्ष्य है ना, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत की हम स्थापना परमात्मा के साथ कर रहे हैं, एक को प्रत्यक्ष करना लक्ष्य है, एक राज्य की स्थापना करना लक्ष्य है, और यदि हम एक नहीं होंगे तो क्या ये संभव हो पाएगा? और दूसरों को भी बोलने का अवसर मिल जाता है कि आप पहले अपने घर को ठीक कर लो, उसके बाद हमें कहना, ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए बाबा ने इशारा दिया, और हम सब समझदार बच्चे हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, जहां कहीं भी व्यक्तिगत हमें शुरुआत करनी है, जहां कहीं भी ऐसी चीज दिखाई देती है, कोई मतभेद नहीं, मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसमें जो ओटे सो अर्जुन बनूं और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करूं। क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने ये होमवर्क हमें दिया है कि बच्चे ये तुम्हें करना है और मुझे करना है, मुझे सामने से, इसलिए क्योंकि मैं बड़ा हूं, और दूसरा ये भी भावना सामने वाले के लिए कि सामने वाला भी मेरा भाई है ना, और भगवान की सेलेक्टेड रचना है, भगवान ने सेलेक्ट किया है, ये बहुत महान है। कई बार हमारे मन में आ जाता है कि ये भी तो ज्ञान सुनता है ना, ये क्यों नहीं समझता, इसको भी तो ऐसा करना चाहिए। इसलिए उनके लिए भावना भी हमारी खराब हो जाती है और ये दूरियां भी हमारी बढ़ती चली जाती है। मानसिक स्तर पर भी, भावनात्मक स्तर पर भी हम इस चीज को चेंज करें कि नहीं, भगवान ने चुना है, और भगवान की सिलेक्शन में, बाबा के महावाक्य कितने सुंदर हैं, भगवान की सिलेक्शन में यदि मैं डिफेक्ट निकालता हूं तो ये भगवान का अपमान है, भगवान का अपमान है। इसलिए जो भी यहां ब्राह्मण कुलभूषण है, छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, भगवान ने चुना है। जिनके साथ मेरा मतभेद भी चल रहा है उसे भी तो भगवान ने चुना है, उसे माया ने थोड़ी गुप्त द्वार से यहां प्रवेश करा दिया मेरी परीक्षा लेने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना, बाबा ने ही चुना है ना उसे भी, और मंदिरों में इनकी भी तो पूजा हो रही है ना, हो रही या नहीं हो रही। और कितनी बड़ी बात है कि सारे अपवित्र संसार में इस आत्मा ने पवित्र रहने का संकल्प लिया है, भगवान का मददगार बन रहा है, मेरे लिए सम्माननीय है, मेरे लिए पूजनीय है, ये भावना सारे विचारों को एक करेगा। संस्कार मिलन की रास तो करनी है ना हम लोगों को, मिलाएं, इसीलिए शुरुआत अपनी तरफ से करें, भावनात्मक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और साथ ही व्यवहारिक रूप से भी, सामने से। यदि गलती सामने वाले की है माफ कर दें, बात करें, और यदि गलती मेरी है तो बात करें और माफी मांग लें, ताकि बातें बिल्कुल सामान्य हो जाएं, अड़े ना रहें, अकड़े ना रहें। यदि पांचों उंगलियों की हमेशा दादी एग्जाम्पल देती हैं, एक एक उंगली यदि बिल्कुल अड़ जाए कि नहीं नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही अकेले सब कुछ कर लूंगा, तो हो पाएगा? खाना बनाना है, खाना खाना है, कपड़े धोना है, ड्राइविंग करनी है, क्या एक उंगली से ये हो सकेगा? नहीं हो सकेगा ना। यदि मैं करने की कोशिश भी करूं, सफल भी हो जाऊं, तो कितना परिश्रम करना पड़ेगा, सोच के देखो। और यदि पांचों साथ साथ हैं, कितना इजी है, खाना खाना हो या कपड़े धोने हो, एनीथिंग, सब कुछ सहज है। इसीलिए इस एकता के बल को समझें, इस संगठन के महत्व को समझें, और ये जो छोटी छोटी चीजों के लिए हम आपस में दूरी बना लेते हैं, वातावरण भी तो खराब होता है ना, होता है या नहीं होता, वातावरण खराब हो जाता है। इसलिए प्यार का माहौल, कोई भी यहां आए क्या महसूस करे कि ये सब फरिश्ते हैं, ये सब देवताएं हैं, आपस में इनका कितना प्यार है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सतयुग में आ गए। वो तो बोलते हैं कि हम सतयुग में आ गए हैं, बाबा पता नहीं क्या क्या चीजें उनको दिखा देते हैं और है भी ये चीजें, बस ये जो छोटी सी चीज हमारे पास रह गई है, जो इशारा बाबा ने दिया है, उस चीज को जरूर हम ठीक कर लें, संस्कार मिलन की सुंदर रास कर लें। तो मतभेद नहीं, मतभेद को हटाकर, मन से मतभेद को हटाकर मन को मन मना भाव करें और मन मिलाने की हम रास करें, ना कि ये द्वंद्व और संघर्ष चलता रहे हमारे मन में। तो पहली चीज जो बाबा ने हमें होमवर्क के रूप में दी है, हम इस चीज पर जरूर कार्य करें और ये जरूर इम्प्लीमेंट करें, अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करें, क्लास के बाद ही जिससे भी ऐसी बात है, कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं ऐसा कि सामने से हम उनसे बात करें, सामने से हम या तो क्षमा मांग लें, सामने से हम उनसे बात करके हेलो कर लें, ओम शांति कर लें, तो देखिए कितना माहौल हल्का हो जाएगा। यदि वो शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत मैं जरूर करूं। कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं, जरा हाथ उठाएं, कर सकते हैं तो वेरी नाइस, जरूर करेंगे, बाबा की इस आश को हम जरूर पूरा करेंगे। बाबा ने ऊपर से हमारे लिए एक सुंदर सा कार्य भेजा है, उम्मीद रहती है ना पेरेंट्स की, माता पिता की, कि मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं, क्योंकि लड़ने झगड़ने वाली स्थिति माता पिता को प्रिय नहीं होती है। दूसरी बात बाबा ने कही, एक साल के लिए स्टॉक जमा करो। तो ये सुन के आपके मन में क्या आया, हाँ जी, कि क्या क्या जमा करके रख लिया जाए, चावल, दाल, सब्जियां, क्या क्या जो जो भी चीजें हो सकती हैं, ये ध्यान में आया, हाँ, और या और कुछ ख्याल में आया? केवल स्थूल चीजों की बात बाबा ने नहीं कही, केवल स्थूल चीजें नहीं कि हाँ हम अन्न रख लें, दाल रख लें, गेहूं रख लें, हाँ एक साल के लिए हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए, बाबा ने जो कहा था हमने स्टॉक जमा करके रख लिया। लेकिन सूक्ष्म इशारा भी बाबा का कि सूक्ष्म चीजों का भी स्टॉक जमा करो। जैसे ये अन्न हमारे तन को चलाएगा, वैसे ही जो सूक्ष्म स्टॉक है वो हमारे मन को भी और साथ ही दूसरी आत्माओं को देने के भी काम आएगा ना। इसलिए दूसरी बात को केवल स्थूल रूप में ना लें, लेकिन सूक्ष्म स्टॉक जमा करें, जमा का खाता बढ़ाते जाएं, ये बाबा का निर्देश है। और जमा कैसे करेंगे? एक तो बचत करने से जमा का खाता बढ़ता है, बचत करें, माताओं को आदत होती है ना, बचत करती हैं वो, बचत करें, संकल्पों की बचत, संकल्प वेस्ट ना हो, व्यर्थ ना उसको गमाते रहे, क्योंकि संकल्प व्यर्थ जाते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे और दूसरों को देने के लायक नहीं रहेंगे, लेकिन मांगते रहेंगे या फिर बाबा से बिल्कुल पुकार करते रहेंगे कि बाबा ये ठीक करो। तो एक तो संकल्प जो वेस्ट जा रहे हैं, व्यर्थ और निगेटिव, इनको हमें अवॉइड करना है। बाबा ने कहा है व्यर्थ और नेगेटिव को जो अवॉइड करेंगे उन्हें परमात्मा अवार्ड मिलेगा। और साथ ही बाबा ने यह भी कहा है कि तुम्हारे संकल्प की एनर्जी ही तुम्हारे भाग्य की एनर्जी है। जितना तुम संकल्पों की बचत करते हो उतने श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बनते हो। दादी गुलजार जी के लिए बाबा कहते हैं ना कि इस बच्ची ने अपने संकल्पों की बहुत बचत की है, संकल्पों का बहुत खजाना इसने जमा करके रखा, इसीलिए बाबा ने इसे अपना माध्यम चुना। आप सोच सकते हैं कितना बल है संकल्पों में। बड़े से बड़ा कार्य भगवान ने भी सृष्टि की रचना, शास्त्रों में कहते हैं, अपने संकल्प के आधार से, कि संकल्पों से सारी सृष्टि चलती है, तो संकल्पों में कितना बल होगा। और हम सारे दिन इधर उधर की बातें सोच के अपनी इस शक्ति को यदि नष्ट कर रहे हैं तो फिर आने वाले समय में हम देवता नहीं बन पाएंगे, लेकिन लेवता बनना पड़ेगा हमें, दूसरों की ओर देखना पड़ेगा। इसीलिए बचत, जमा करें और जमा के लिए बचत करें, संकल्पों की बचत करें, साथ ही समय की भी बचत करें, ये वेस्ट ना जाए। पापा कहते तुम्हारा एक एक सेकेंड अन्य युगों के एक वर्ष के तुल्य है, इतना इंपॉर्टेंस हम संगम युग के समय को दे रहे हैं। तुम एक कदम में पदम जमा कर सकते हो यदि याद में कदम उठाते हो तो, इतना मैं अपने एक एक सेकेंड को इंपॉर्टेंस दे रहा। इंपॉर्टेंस देंगे तो जमा होता जाएगा, लेकिन यदि हम व्यर्थ में समय को भी, चलो क्या होता है ना, ये देख लिया, वो देख लिया, ये बात कर ली, वो बात कर ली। बाबा ने कहा कि कई बार ये कहते हैं बच्चे की पांच मिनट ही तो बात की ना, बाबा ने कहा पांच मिनट ने कितना वेस्ट कर दिया ये सोचो। इसीलिए हम देखें कि कहीं मेरा समय आज को ही देख लें, वेस्ट तो नहीं हुआ। ये बाबा चाहते हैं कि जमा करना है तो बचत करो, ये बचत चाहिए, वाचा की भी बचत। बाबा ने कहा यदि पांच शब्दों में काम हो सकता है तो पचास शब्द मत बोलो। अनावश्यक रूप से हमारा ये टेप रिकॉर्डर शुरू ही रहे, सामने वाला सुनना चाहे या ना चाहे, हम तुझे शुरू हैं, हम बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। जो जितना बोलता है अपनी एनर्जी भी नष्ट करता है और साथ ही साथ उसकी वाणी में बल नहीं रहता। आपने देखा होगा जब हम मौन रहते हैं और मौन के बाद जब वाचा में आते हैं, एक एक शब्द सामने वाले के दिल में उतरता है। और यदि आप बोले जा रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है। जैसे बाबा जब आते हैं हमारी हृदय में कितनी भावना होती है कि बाबा कुछ बोलें, बाबा कुछ बोलें, राइट? हम इंतजार करते हैं बाबा बोले, बाबा बोले। एक एक शब्द भगवान के महावाक्य हैं, जिसका इंतजार रहता है हम लोगों को। तो बाबा ने कहा जैसे मैं सद्गुरु हूं, तुम भी मास्टर सद्गुरु हो, तुम्हारी वाणी के लिए भी ऐसा ही इंतजार करें लोग, कब ये बोले, कब ये बोले, कब इनके मुख से वरदानी शब्द निकले, वो हमारे लिए फलीभूत हो जाएं। और ये बात नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा ने कहा है जो वाणी की शक्ति को जमा करेंगे, कम से कम बोलेंगे, उनके वाणी अंत में वरदानी बन जाएंगे। और जो कम से कम संकल्प करेंगे, जिनके पास संकल्पों का खजाना जमा होगा, उनके संकल्प भी वरदानी बन जाएंगे, उन्हें संकल्प सिद्धि का वरदान मिल जाएगा। ईश्वरीय महावाक्य है। अब अंत समय में हम पे डिपेंड करता है कि हम इनके द्वारा सेवा करना चाहते हैं या नहीं। अंत में यही हमारे पास साधन होंगे, संकल्पों के द्वारा, वाणी के द्वारा सेवा करने का। तो एक तो जमा करने का आधार बचत, और दूसरा जितना सफल करेंगे उतना स्टॉक हमारा जमा होता जाएगा। जितना सफल करेंगे अपने ज्ञान के खजाने को, अपने गुणों के खजाने को, अपनी शक्तियों के खजाने को, जितना हम सफल करेंगे, जितना देंगे, उतना ये जमा होता चला जाएगा। इसलिए दोनों को आधार बनाएं, याद और सेवा हमारी स्टॉक को बढ़ाने का साधन है। चिपके रहें बाबा से, जितना हो सकता है भगवान के साथ, भगवान के साथ रहेंगे, चिपके रहेंगे, उनकी याद में मग्न रहेंगे, भरपूर होता रहेगा स्टॉक। और जितनी सेवा में लगे रहेंगे उतना हमारी दुआओं का स्टॉक भी जमा होता चलेगा। तो ये खजाने अब जमा करते चलें, वेस्ट करने का समय अब नहीं है, क्योंकि यही जमा हमारे काम आने वाला है। और चेक भी करें, अभी चेक करके देख लें, यदि अंत में या अभी ही कोई शांति मांगने के लिए मेरे पास आता है, क्या मेरे पास शांति का इतना स्टॉक है कि मैं उसे अपनी दृष्टि से, अपनी उपस्थिति से उसके मन को शांत कर दूं? है मेरे पास इतना स्टॉक? यदि कोई दुखी आत्मा आता है, बहुत दुखी आत्मा, जिसका पूरा परिवार मर गया हो, उसका सब कुछ दिवाला निकल गया हो, दुख में बेहाल है वो व्यक्ति, यदि रोता पीटता मेरे पास आता है, क्या मेरे पास सुख और आनंद का इतना स्टॉक है कि मैं उसे क्षण भर में शांत कर दूं, उसे सुखी कर दूं, उसका रोना बंद करा दूं? क्या मैं ऐसा मास्टर सुख का सागर बन गया हूं? इतने सुख के भंडारे क्या मेरे भरपूर हैं? या कोई अपवित्र आत्मा आ जाती है, बाबा ने कहा बहुत अपवित्र आत्माएं अंत में भी आएंगी, क्या मेरे अंदर पवित्रता का इतना स्टॉक है कि मैं उसके मन को पवित्र कर दूं, उसके विचार को परिवर्तित कर दूं? क्या इतनी पवित्रता मेरे अंदर है? या कोई बिल्कुल शक्तिहीन व्यक्ति आ जाए, क्या मेरे पास शक्तियों का स्टॉक है कि मैं अपनी शक्ति से उसे शक्तिशाली बना दूं? चेक करना है। और यदि अभी मेरा ये स्टॉक जमा नहीं है तो ये बाबा ने हम सबको इशारा दिया है कि अपने स्टॉक को जमा करते चलो, बढ़ाते चलो, क्योंकि अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी तुम्हारे पास जिनको तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि हम ही तो इष्ट देव देवियां हैं ना, कोई और है क्या? हम ही पूर्वज हैं, हम ही इष्ट देव देवियां ही हैं, हम ही मास्टर गॉड हैं, मास्टर ब्रह्मा हैं, हम ही देवता बनने वाले हैं, तो देगा कौन? हमें ही तो देना होगा ना। तो तैयार करें अपने आप को इस सेवा के लिए कि अब लंबी लंबी क्यों लगने वाली है हमारे घर के सामने, हमें देना होगा। चेक करें और जमा करते चलें, वेस्ट नहीं। और साथ ही ये भी चेक जरूर करना है हम लोगों को कि कहीं लीकेज तो नहीं है। एक तरफ से हम जमा भी करते जा रहे हैं, मान लीजिए घड़े में आप पानी भी डाल देते हैं, लेकिन कहीं से छोटा सा छेद हो तो बहता जाएगा। पहले लोहे की बाल्टी हुआ करते थे, उसमें नीचे कहीं कहीं से छेद हो जाया करता था। बच्चे तो खेला करते थे कि हाँ इधर से भी पानी निकल रहा है, इधर से भी फव्वारा निकल रहा है, राइट? लेकिन उस बाल्टी को भरने के 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वो खाली हो जाया करता था। क्यों? छेद, लीकेज। तो यदि हम भी भर तो रहे हैं सेवा से भी और साथ ही साथ याद से भी, लेकिन यदि लीकेज है हमारे अंदर, बंद करें उस लीकेज को। क्या लीकेज है? हमारा व्यर्थ, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना बहुत बड़ा लीकेज है। जमा कर रहे हैं लेकिन यदि व्यर्थ व्यर्थ सोचे जा रहे हैं अपने लिए, लोगों के लिए, व्यर्थ बोले जा रहे हैं, बहुत बड़ा लीकेज है। हमारी शक्तियां जो हमने जमा की हैं वो साथ साथ नष्ट होती जा रही है। इसीलिए अपने शुभचिंतक बने। आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। मित्र बने और इस व्यर्थ को बंद करें, क्योंकि यहां से हमारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं लगातार, सोच सोच के, बोल बोल के। दूसरी लीकेज, सबसे बड़ी लीकेज, मैं और मेरापन। जितना हम मैं और मेरापन लाते हैं, बाबा का ही महावाक्य है कि जब तुम मैं और मेरा करते हो तो तुम्हारा माइनस होता जाता है, जमा का जो खाता है वो माइनस होता जाता है, और जब बाबा बाबा करते हो तो जमा का खाता बढ़ता चला जाता है। दादियों को कभी सुना है मैं मेरा कहते हुए, मैंने ये किया, मेरा ये है? नेवर। इसीलिए तो दादियां दादियां हैं, इसीलिए उनके जमा का खाता इतना बड़ा हुआ है। इसीलिए मैं मेरा नहीं, ये माया के आने के द्वार भी हैं और साथ ही हमें माइनस में भी ले जाते हैं। जितना मेरा मेरा करते हैं मैले होते चले जाते हैं। इसलिए निमित्त भाव, बाबा ने ये भी कहा कि जब निमित्त भाव से तुम कर्म करते हो 100% जमा होता है, और जब मैं और मेरे के साथ कर्म करते हो तो केवल 5% जमा होता है। अब हमारे ऊपर है कि हमें 5% चाहिए कि 100% चाहिए, 100% ना। तो निमित्त भाव के साथ करें। मैं जब आता है, बाबा ने कहा मैं आत्मा शब्द यूज करो, और जब मेरा आता है तो मेरा बाबा। चेंज करो, परिवर्तन करो इसे, मैं आत्मा, मेरा बाबा। और वैसे भी करण करावनहार तो बाबा ही है ना, हम कर रहे हैं या बाबा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं नहीं, बाबा करा रहे हैं। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग महाभारत में आता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया कौरवों और पांडवों का, पांडवों की विजय हो गई, तो पांचों पांडव आपस में लड़ने लगे कि मेरे कारण युद्ध जीता गया, मेरे कारण युद्ध जीता गया। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने सबसे ज्यादा शत्रुओं का संहार किया। भीम ने कहा नहीं, देखा नहीं मैंने कितने गदा से वार किया और लोगों की धज्जियां उड़ा दी। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मेरा भाला भी तो काम कर रहा था। नकुल सहदेव ने कहा नहीं, हम भी पीछे थोड़ी थे, हमने कितनी तलवार घुमाई आप लोगों ने देखा ही नहीं। लड़ने लगे आपस में कि मेरे कारण युद्ध जीता गया। अब पहुंचे श्री कृष्ण जी के पास। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तटस्थ होकर के पूरे ही 18 दिन का युद्ध देखा है, बारबरीक थे शायद, उनके पास पहुंचे। पूछा, भाई बताओ किसके कारण युद्ध जीता गया। तो बारबरीक ने कहा कि भाई पूरे ही 18 दिन मुझे ना तो अर्जुन का तीर दिखाई दे रहा था, ना ही भीम का गदा दिखाई दे रहा था, ना ही ये तलवारें दिखाई दे रही थी नकुल सहदेव की। तो सब नाराज हो गया, तुम शायद सो गए थे, यही सब चीजें तो 18 दिन तक हो रही थी, तुमको और क्या दिखाई दे रहा था जब ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने कहा मुझे पूरे ही 18 दिन तक इस रणभूमि में स्वदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था और स्वदर्शन चक्र ने ही शत्रुओं का संहार किया, ना किसी के तीर ने, ना किसी के गदा ने, ना किसी के तलवार ने। चूंकि भगवान का स्वदर्शन चक्र था वही शत्रुओं का संहार कर रहा था, तो सबके अहम नष्ट हो गया। तो ये भान मैं कर रहा हूं इसकी आवश्यकता ही नहीं है, यह ज्ञान है। करण करावन हार बाबा करा रहे हैं, ये फीलिंग हमारी जमा के खाता को बढ़ाता है और मैं मेरापन लीकेज का काम करने लगता है। इसीलिए इस द्वार को भी हम अवश्य बंद कर दें और साथ ही कोई पाप कर्म भी ना हो। यदि पाप साथ साथ होता रहता है लीकेज का काम करता है। हम एक तरफ पुण्य भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और साथ साथ विकारों के वश होकर के छोटे मोटे पाप भी कर रहे हैं, तो वो भी लीकेज का काम करता है। इसीलिए पाप कर्म, अब तो हमें पुण्य के पथ पर चलना है, संपूर्ण देवता बनना है, तो फिर इन चीजों से मुंह मोड़ लें। तो दूसरी चीज, स्टॉक केवल अन्न का नहीं, लेकिन इस सूक्ष्म अन्न का भी करना है जो हमें मन के लिए चाहिए। और तीसरी बात बाबा ने कही, अमृत वेला तुम्हारा बहुत पावरफुल हो। इसके लिए हम अमृत वेले के महत्व को अपने आप को जरूर समझाएं कि अमृत वेला क्यों महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं कि जो जितना जल्दी सुबह उठता है वो नई दुनिया में भी उतनी ही जल्दी आएगा, और जो जितना देर से उठता है, अब देख ले कि हमारा क्या हाल है। जो देर से उठते हैं वो अब सजग हो जाए, बाबा ने पावरफुल करने को कहा है। तो पहले तो इसकी महत्ता अपने आप को हम जरूर समझाएं। देखें, ब्रह्मा बाबा हो या मम्मा हो, सुबह अमृत वेले उठ करके कितनी गहन साधना करते थे। मम्मा ने संपूर्णता को इतनी जल्दी क्यों प्राप्त कर लिया, बाबा ने अमृत वेले की साधना, कितनी गहन साधना। दादियों को भी देखें, अभी तक कितनी महत्ता है, भले ही तन साथ ना दे रहा हो फिर भी बाबा के कमरे में जाकर के जरूर बैठते हैं। मनमोहनी दीदी एक बार लेट से कहीं पहुंची बॉम्बे, 1 बज गया था शायद। रमेश भाई जी ने कहा कि दीदी बहुत लेट हो गया है, कल आप अमृत वेला ना आए, आराम करें, सीधे क्लास में ही आए। लेकिन दीदी फिर भी पहुंच गई अमृत वेले। महत्ता कि ये वो समय है जबकि भगवान हमारा श्रृंगार करते हैं, ये वो समय है जबकि भगवान ने स्पेशल समय हमारे लिए रखा है, खास अपॉइंटमेंट दी हुई है कि ये समय मेरे बच्चों के लिए है। हमारा श्रृंगार भी होता है, बाबा हमें भरपूर भी करते हैं, साथ ही वरदानों से हमारी झोली भी भरते हैं। यदि भक्तों को ये पता चल जाए कि एक ऐसा समय है जबकि भगवान वरदान बांटते हैं तो क्या होगा, भक्त तो सोएंगे ही नहीं, राइट। इसलिए अब यदि सुबह थोड़ा सा भी आलस्य है, चलो ठंड के दिन थे, अब तो वो चले गए ना, ठंड के दिन में चलो थोड़ी रजाई प्रिय लगती है। एक कुमार था, उसको बहुत नींद आती थी, तो उसने एक स्लोगन अपने बिस्तर के ठीक सामने लगा के रखा हुआ था दीवार पे, और वो स्लोगन ये था कि तुम्हें भगवान से रजाई लेनी है इसलिए रजाई को लात मारनी है। तो जैसे ही उसकी आंख उस पे पड़ती थी, फटाक से वह अपनी रजाई को लात मार के उठ के बैठ जाया करता था। तो आपको रजाई चाहिए या रजाई चाहिए, रजाई चाहिए ना, एक ही चीज मिल सकती है, या तो रजाई ले लो या रजाई ले लो, राइट। इसीलिए अब रजाई से मोह त्याग के राजाई की ओर हमें बढ़ना है और बाबा से बहुत शक्तिशाली किरणें सुबह सुबह प्राप्त करनी है। क्योंकि संसार में भी जितने भी महापुरुष हुए हैं आप देखें, उन्होंने सुबह के समय को बहुत महत्व दिया है। और वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि सुबह के समय यदि आप मेडिटेशन करते हो तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत शक्तिशाली बन जाते हो, स्वस्थ रहते हो, क्योंकि ऐसे हार्मोन्स उस समय स्रावित होते हैं। तो इस समय को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन शक्तिशाली कैसे बनेगा? अपनी दिनचर्या को बाबा ने कहा है पहले ठीक करो। यदि अमृत वेला शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना है तो अपनी दिनचर्या को पहले अच्छा करो। सारे दिन कोई ना कोई अभ्यास चलता रहे, सारे दिन बाबा के साथ का सुंदर अनुभव हम करते रहें। साथ ही ये भी कि मर्यादा की लकीर के अंदर रहें, मर्यादा की लकीर से बाहर ना निकलें। यदि मर्यादाएं तोड़ते रहेंगे सारे दिन और सोचे कि हम सुबह बहुत पावरफुल योग करें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। मर्यादित जीवन, संयमित जीवन और साथ साथ बाबा की भिन्न भिन्न रूप से याद जुड़ी रहे, जैसे हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वो एक लिंक बनाने का सुंदर हमारे पास साधन है। और खास चीज, रात को सोते समय हम बाबा को अपना पोता मिल जरूर दें। एक अच्छी आदत डाल सकते हैं कि रात को एक पत्र बाबा को लिखें कि बाबा आज का दिन मेरा कैसा रहा। भले चार लाइन में लिखें, छह लाइन में लिखें, आप पाएंगे कि आपका कनेक्शन बाबा से जुड़ जाता है। यदि आप बाबा को लेटर लिखते हो, किसी भी संबंध से लिखो, बाबा को लेटर जरूर लिखो। एक डायरी बना लो, उसको कहीं रखने की जरूरत नहीं है। कई बार रहता है कि भाई मैं लेटर लिखूं तो वो लेटर लिख करके कहां डालूं। नहीं, अपने पास रखें, एक डायरी ही बना लें और उसमें चार लाइन में बाबा को सारे दिन का सुंदर समाचार दे दें। सारे दिन में एक एक चीज लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो मन में भाव आ रहे हैं प्यार से बाबा को हम अर्पित करें तो हल्के हो जाते हैं। बाबा ने ये कहा है कि जब तुम चार्ट देते हो हल्के भी हो जाते हो, नींद भी बहुत अच्छी आती है। और साथ ही एक फायदा ये भी होता है, जो रोज अपना चार्ट बाबा को देते हैं, बाबा ने कहा है उन्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। जाने की इच्छा तो नहीं है किसी को धर्मराजपुरी में? कि देखें धर्मराज जी कैसे हैं, उनकी भी शक्ल तो देख लें। हमने सब कुछ तो देख लिया है, धर्मराज को देखना है कि वो कैसे दिखाई देते हैं, ऐसा तो नहीं है? बहुत ही कड़ी वहां के जो भी नियम हैं, कानून हैं, इतने भयंकर हैं कि वो गरुड़ पुराण में इसका बड़ा भयंकर वर्णन है। चार्ट दें, चार्ट देंगे हल्के होंगे। यदि बोझ के साथ सोते हैं तो सुबह अमृत वेला भी बोझ। जैसे कहा जाता है कि अंतमति सोगति, तो रात को जब आप सो रहे हैं वो भी तो अंतमति है ना। किन स्मृतियों में आप सो रहे हैं, किन संकल्पों में आप सो रहे हैं, उसका इफेक्ट दूसरे दिन सुबह पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए रात को बिल्कुल हल्के होकर बाबा को लेटर देके बहुत अच्छे से दो प्रैक्टिस करते हुए सो सकते हैं कि मैं बाबा की गोद में सर रखकर सो रहा हूं, ब्रह्मा मां की गोद में, और ब्रह्मा मां प्यार से मुझे थपकियां देते हुए सुला रही हैं कि मीठे बच्चे सो जाओ, ज्ञान की लोरी सुना रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी, अब तो तुम्हें नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया कितना सुंदर होगा, तुम्हें सारे विश्व का कल्याण करना है, तुम मेरे बहुत लाडले हो, बहुत प्यारे हो, ऐसी सुंदर लोरी सुनाते हुए ब्रह्मा मां मुझे सुला रही है। और यदि इस स्मृति में सोते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्मृति है, आनंद की स्मृति। जैसे बच्चा सोते सोते मुस्कुराता रहता है ना, वैसे हमारे चेहरे पे भी मुस्कान होगी। बाबा कई बार भेजते थे कि जाओ देख के आओ कि कौन सतो प्रधान नींद में सोया है, कौन तमो प्रधान नींद में सोया है। तो दादियां जाती थी देखने के लिए, जो ऐसे उल्टा पुल्टा पड़ा रहता था तो बाबा कहते थे ये तमो प्रधान नींद में सोया हुआ है। और कुछ ऐसे होते थे जो बिल्कुल ही जैसे चेहरे पे मुस्कान है, हा? तो बाबा कहते थे हाँ ऐसी नींद होनी चाहिए, योग निद्रा, ऐसे सो रहे हैं जैसे समाधि की स्थिति में है। ये तब होता है जब कुछ सुंदर प्रैक्टिस करते हुए हम सोते हैं। दूसरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं सोते समय कि जैसे नहीं हम अपनी गाड़ी को गैराज में रखते हैं और उसके बाद अपने बेडरूम में जाकर के सोते हैं, ऐसे तो नहीं हम अपनी गाड़ी सहित ही बेडरूम में घुस जाते कि नहीं मैं अपनी गाड़ी सहित ही बेडरूम में जाऊंगा और इसके साथ साथ सोऊंगा, नहीं ना। हम अपने शरीर रूपी गाड़ी को भी बिस्तर पर छोड़ें और आत्मा बन करके परमधाम चले जाएं, वहां बाबा के साथ विश्राम करें परमधाम में। शरीर यहां, मैं आत्मा वहां। आप देखें कितनी सुंदर स्थिति बन जाती है, गहन स्थिति बन जाती है। और यदि इन स्मृतियों के साथ आप सोते हैं, निश्चित रूप से लास्ट का संकल्प आपके दूसरे दिन का पहला संकल्प होता है। यदि आप व्यर्थ में सोते हैं, दूसरे दिन अमृत वेला वेस्ट हो जाता है, आपको युद्ध करना पड़ता है। और यदि आप इन स्मृतियों में सोएंगे, इन अभ्यासों के साथ सोएंगे, दूसरे दिन आपकी नींद बिल्कुल सहज रूप से खुलेगी, सहज, किसी को जगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तो कोई हिला हिला के थक जाता है, फिर भी आप नहीं उठते, या घंटी बजती है, अलार्म बजता है, फिर भी आप उसको धड़ से मार देते हैं बेचारे को सुबह सुबह, और फिर से सो जाते हैं। वो भी सोचता होगा सुबह सुबह मेरी पिटाई हो गई, राइट। अभ्यास करें, दूसरे दिन जैसे ही आंख खुले अच्छी तरह से, बाबा ने कहा है जैसे ही आंख खुले बाबा को सामने देखा, बाबा से गुड मॉर्निंग किया, और गुड मॉर्निंग करने के साथ साथ सुंदर संकल्पों के साथ कि कितना भाग्यवान हूं मैं, भगवान मेरे सामने हैं, भगवान मेरा श्रृंगार करने के लिए, मुझे वरदानों से सजाने के लिए मेरे सामने खड़े हुए हैं, मुझे भगवान से मिलन मनाना है, ये मेरे माता पिता हैं, मुझे अपने माता पिता के समान बनना है, सारे विश्व को सकाश देनी है, अपने आप को योग्य बनाना है। अच्छे विचारों से अपनी दिन की शुरुआत करेंगे। और बाबा ने कहा है कि अमृत वेले खास समान भाव का वरदान बाबा से लो, नशे के साथ शुरुआत करो। जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो कितने तैयार होकर के जाते हैं, नशे के साथ जाते हैं, कोई पूछता भी है, कोई नहीं भी पूछता तो भी बताते हैं कि पता है मैं पीएम से मिलने जा रहा हूं आज। आज नहीं, यदि 15 दिन के बाद भी जाना हो तो भी बोलेगा कि सीएम ने मुझे अपॉइंटमेंट दी है, पीएम ने मुझे अपॉइंटमेंट दी है। कोई ना भी पूछे तो भी बताते हैं, और अच्छे से टिप टॉप होके जाते। और यहां कई बार हम क्या करते हैं, ठंड का यदि दिन है तो ठीक से मुंह भी नहीं धोते, थोड़ा सा पानी लेके, केवल इतना, उससे ज्यादा नहीं, बहुत ठंड है, केवल आंखों में लगाया, उसके बाद चले जाते हैं हम। भगवान से मिलने के लिए कितना तैयार होके बैठना चाहिए ना, राइट। केवल ऐसे नहीं, नहीं तो नींद की स्थिति रहेगी, और जो शक्तिशाली योग बाबा कहते हैं उस शक्तिशाली योग का अनुभव नहीं हो पाएगा। और कई बार तो हम अपने बिस्तर पे ही पूरा रजाई लपेट के बैठ जाते हैं, पूरा ऐसी कि बस आंखें दिख रही होती, तो बाबा भी वहां ध्यान से देखते होंगे है कौन ये, बस आंखें दिखाई दे रही हैं कि बच्चा है कौन, तो बाबा को भी पहचानने में दिक्कत आती होगी। तो ऐसे लपेट के बैठने की जरूरत नहीं है, बिस्तर पे यदि बैठेंगे तो बिस्तर पे ही लुढ़क जाएंगे, बिस्तर पे ही नींद आ जाएगी। बिस्तर का त्याग करें, रजाई का त्याग करें, बाबा के कमरे में जाएं, बाबा इंतजार कर रहे हैं मेरा। कोई आपका इंतजार, सोचो दो प्रेमी होते हैं, यदि प्रेमी इंतजार कर रहा हो, प्रेमिका कितनी खुशी से भाग के जाती है, या फिर प्रेमिका इंतजार कर रही हो, प्रेमी कितना खुशी से तैयार होकर के जाता है कि मेरा इंतजार कर रही है, राइट। कितना आनंद होता है, कितना उत्साह होता है, और वो दौड़ के पहुंचता है, बिफोर टाइम पहुंच जाता है, बिफोर टाइम पहुंचता है, राइट। यहां भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे लिए बैठे हैं, मेरा श्रृंगार करने के लिए, मुझे भरपूर करने के लिए मुझे तैयार होके जाना है, अच्छी तरह भरपूर होना है, बहुत शक्तिशाली योग करना है। फिर विविध अभ्यास बाबा ने दिए हुए, उन सब अभ्यासों को करें। अमृत वेले की बुक भी है, आप जरूर उसको एक बार पढ़ लें, बाबा ने उसमें महत्ता भी बताई है अमृत वेले की, कैसे आप अभ्यास करें वो भी बताया हुआ है, उसको एक बार आप जरूर गो थ्रू करें। तो विशेष आप सबके लिए, हम सबके लिए मैं यही कहूंगा, इस बार शिवरात्रि में बाबा नहीं आए, अपने जन्मदिन पे नहीं आए, हमारे जन्मदिन पे नहीं आए, लेकिन ये 3 सौगात बाबा ने बर्थडे गिफ्ट के रूप में हमसे मांगी है। तो गिफ्ट तो देंगे ना बाबा को, हमेशा हम बाबा को बर्थडे गिफ्ट देते हैं, और बाबा गिफ्ट मांगते भी हैं कि बर्थडे गिफ्ट दो, मुझे ये चाहिए। तो इस बार बाबा ने ऊपर से ही हमसे ये गिफ्ट मांगी है कि बच्चे ये 3 गिफ्ट मुझे प्रदान करो। तो देंगे ना ये 3 गिफ्ट, देंगे ना, तो अच्छी तरह मुझे ये गिफ्ट देना है, नंबर 1 लेना है, और बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। ये उमंग रखें, ये उत्साह रखें, और जो इसे पूर्ण करेगा, आप सोच सकते हैं कि भगवान उन पे राजी होंगे, भगवान की दुआएं, उनका आशीष, सबके हम अधिकारी बन जाएंगे। तो इस अवसर को मिस नहीं करना है, और उनकी दुआओं का पात्र बन जाना है। तो आप नंबर 1 लें, यही ढेर सारी शुभकामना आप सबके लिए। ओम शांति।